एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर के पाठकों के दिलों को छुआ है। खालिद हुसैनी की पहली किताब और शायद सबसे ज्यादा चर्चित भी, द काइट रनर।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आप कह सकती हैं कि भावनाओं का एक पूरा समंदर है। दोस्ती है, धोखा है, पछतावा और वो अपने खोए हुए वतन की यादें,
सब कुछ है इसमें।
सही कहा। और इसके लेखक खालिद हुसैनी, वो खुद अफगान अमेरिकी हैं, काबुल में जन्म हुआ पर फिर सोवियत अफगान युद्ध, उसके चलते परिवार के साथ अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। तो ये जो विस्थापन का दर्द है, अपनी जड़ों से कटने का एहसास, वो उनके लेखन में साफ दिखता है।
हाँ, बहुत गहराई से महसूस होता है। द काइट रनर ये 2003 में आई थी और आते ही मतलब रातों रात हिट हो गई। ये एक तरह की हिस्टोरिकल फिक्शन है ना? हमें अफगानिस्तान के उस दौर में ली जाती है जब जब राजशाही खत्म हो रही थी और तालिबान का असर बढ़ रहा था। और साथ ही इसे बिल्डुंग्स रोमान भी कहते हैं, मतलब एक किरदार आमिर, उसके बचपन से बड़े होने तक का सफर, उसके नैतिक उतार चढ़ाव की कहानी।
तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है।
बिल्कुल,
हम कोशिश करेंगे कि किरदारों के अंदर जो चल रहा है, उनके रिश्तों की जो परतें हैं और जो बड़े सवाल ये किताब उठाती है, उनको समझे।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतीत के गुनाहों से, उन गलतियों से, चाहे वो अनजाने में हुई हो या जानबूझकर, क्या उनसे वाकई कभी छुटकारा मिल सकता है? क्या प्रायश्चित का कोई रास्ता होता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी शुरू करते हैं।
ठीक है, तो कहानी हमें ले चलती है 1970s के दशक के काबुल, युद्ध से पहले का काबुल। जिंदगी थोड़ी थोड़ी धीमी थी, शांत थी।
वहां हम मिलते हैं दो लड़कों से, आमिर और हसन।
आमिर वो एक अमीर पश्तून घर का लड़का है, कहानी वही सुना रहा है। और हसन उसके पिता के यहाँ काम करने वाले हजारा नौकर का बेटा है, लेकिन वो आमिर का सबसे जिगरी दोस्त है,
बिल्कुल
परछाई जैसा।
और यही कहानी की पहली परत खुलती है। उनकी दोस्ती गहरी दोस्ती है, लेकिन बीच में एक एक अनदेखी दीवार भी है,
समाज की बनाई हुई दीवार।
पश्तून मालिक, हजारा नौकर।
हाँ, उस जमाने में, और सच कहूं तो आज भी कई जगह, हजारा समुदाय को अफगानिस्तान में बहुत भेदभाव झेलना पड़ता है। ये तनाव उनकी दोस्ती में हमेशा रहता है, भले ही वो अनार के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां पढ़ें
या साथ में पतंग उड़ाएं।
हाँ, पतंग उड़ाना वो तो जैसे उनके बचपन की सबसे सुनहरी यादें, खासकर सर्दियों की पतंगबाजी प्रतियोगिता। वो सिर्फ खेल नहीं था, एक जुनून था।
हाँ, और यहीं आमिर का जो अंदरूनी संघर्ष है वो सामने आता है। वो अपने पिता बाबा, उनकी नजरों में हीरो बनना चाहता है। बाबा शहर के बड़े आदमी हैं, रौबदार, उसूल वाले, पर आमिर को लगता है कि वो उससे ज्यादा हसन को मानते हैं, उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। आमिर में एक एक असुरक्षा सी है, थोड़ी जलन भी।
और बाबा का एक फलसफा था, याद है?
हाँ बिल्कुल,
कि दुनिया में सिर्फ एक ही गुनाह है, चोरी, बाकी सब गुनाह इसी से निकलते हैं।
ये बात आगे चलकर बहुत बहुत मायने रखेगी।
और फिर आती है 1975 की वो सर्दियां, वो पतंगबाजी प्रतियोगिता, और आमिर जीत जाता है। बरसों बाद उसे बाबा की आंखों में वो फख्र नजर आता है जिसके लिए वो तरसता था।
और हसन, वो क्या करता है?
हसन हमेशा की तरह वफादार, वो आमिर के लिए वो आखिरी कटी पतंग लूटने दौड़ता है और जाते जाते कहता है, आपके लिए हजार बार भी।
आपके लिए हजार बार भी, ये शब्द ये तो पूरी कहानी में गूंजते रहते हैं ना?
लेकिन उस पतंग को लाने की कीमत वो हसन को बहुत भारी पड़ती है।
हाँ, बहुत भारी। एक सुनसान गली में उसे आसिफ और उसके गुंडे घेर लेते हैं।
आसिफ वही नस्लवादी वैशी लड़का जो हजारों से नफरत करता है, वो हसन से पतंग छीनना चाहता है।
और हसन मना कर देता है।
हाँ, और तब आसिफ वो उसके साथ क्रूरता की हद पार कर देता है, उसका यौन उत्पीड़न करता है।
और आमिर, वो कहाँ था?
आमिर ये सब छिपकर देख रहा होता है, वो डर जाता है, वो अपनी जीती हुई पतंग खोने के स्वार्थ में वो अंधा हो जाता है, वो हसन की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो भाग जाता है।
उफ, ये सिर्फ एक दोस्त के साथ धोखा नहीं था, ये आमिर की मासूमियत का अंत था। उस पल से उसके अंदर जो अपराध बोध का जहर घुलता है, वो उसे जिंदगी भर सालता रहता है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस अपराध बोध से पीछा छुड़ाने के लिए, हसन को अपनी नजरों से दूर करने के लिए, आमिर एक और बहुत गिरी हुई हरकत करता है। वह हसन पर अपनी घड़ी और कुछ पैसे चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगा देता है।
चोरी का इल्ज़ाम, वही चोरी जिसे बाबा सबसे बड़ा गुनाह मानते थे। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है ना, बाबा हसन को माफ़ कर देते हैं।
हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। शायद वो कुछ जानते थे या शायद उनका दिल बड़ा था, पता नहीं। पर हसन के पिता अली, जो शायद सब समझ गए थे, वो चुपचाप अपनी इज्जत के साथ वो घर छोड़ देते हैं।
हसन और अली चले जाते हैं और आमिर और हसन का रिश्ता वहीं टूट जाता है। बाबा का वो उसूल कि चोरी ही एकमात्र पाप है, कितना खोखला लगता है इस मोड़ पर, खासकर जब हमें बाद में बाबा के अपने राज पता चलते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 80 का दशक आता है, सोवियत फौजें अफगानिस्तान में घुस आती हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आमिर और बाबा को अपना मुल्क, अपना घर सब छोड़ के भागना पड़ता है।
एक मुश्किल सफर के बाद वो अमेरिका पहुंचते हैं, कैलिफोर्निया में। यहाँ जिंदगी बिल्कुल अलग है। काबुल के वो इज्जतदार अमीर बाबा अब एक गैस स्टेशन पर काम करते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, पर वो अपनी आन नहीं छोड़ते।
अमेरिका में बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा सुधरता है। आमिर पढ़ाई करके लेखक बनने का सपना देखता है, हालांकि बाबा शुरू में इसे मतलब कुछ खास पसंद नहीं करते।
हाँ, और यहीं उसकी मुलाकात सोराया से होती है। वो भी एक अफगान शरणार्थी परिवार से है। पारंपरिक तरीके से उनकी शादी होती है और शादी से पहले सोराया बहुत हिम्मत दिखाती है।
हाँ, वो आमिर को अपने अतीत की एक गलती के बारे में बताती है, पूरी ईमानदारी से। और उसकी ये ईमानदारी वो आमिर के सीने में दबे राज पर और बोझ डाल देती है। वो सोचता है, सोराया इतनी बहादुर है और मैं इतना कायर।
फिर शादी के बाद बाबा को कैंसर हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। आमिर और सोराया औलाद चाहते हैं, पर पता चलता है कि वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते।
और आमिर इसे भी अपने पुराने गुनाहों की सजा ही समझता है। वो एक कामयाब लेखक बन जाता है, लेकिन वो अतीत का साया, हसन का चेहरा, वो गली, उसका पीछा नहीं छोड़ते।
और फिर सालों बाद 2001 में एक फोन कॉल आता है पाकिस्तान से। फोन पर है रहीम खान, बाबा के पुराने दोस्त, आमिर के मेंटोर, वो शख्स जिसने बचपन में आमिर की लिखने की कला को पहचाना था।
रहीम खान बहुत बीमार है और वो आमिर से कहते हैं, देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन, फिर से अच्छा बनने का एक रास्ता है। ये शब्द, ये जैसे आमिर के जख्मों पर मरहम भी हैं और एक चुनौती भी।
आमिर इस बुलावे पे पाकिस्तान जाता है, पिशावर। वहां मरते हुए रहीम खान वो राज खोलते हैं जो सालों से दबे हुए थे।
वो बताते हैं कि हसन का क्या हुआ। उसकी शादी हुई, बेटा हुआ सोराब। वो बाबा के पुराने घर में रह रहे थे, लेकिन जब तालिबान आए तो उन्होंने हसन और उसकी बीवी को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो हजारा थे, घर पर कब्जा करना चाहते थे।
ये सुनकर ही आमिर हिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो अभी बाकी था।
हाँ, रहीम खान खुलासा करते हैं कि हसन अली का बेटा नहीं था, वो बाबा का बेटा था, आमिर का सौतेला भाई।
क्या? ये सुनते ही आमिर के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पिता, उसका हीरो, जिसने चोरी को सबसे बड़ा पाप कहा, उसने खुद अपने सबसे करीबी दोस्त अली के सम्मान की, उसके हक की चोरी की थी।
बाबा की सारी इज्जत, सारा आदर एक पल में ढह जाता है।
और आमिर का अपना विश्वासघात, वो अब और भयानक लगने लगता है। उसने सिर्फ एक दोस्त या नौकर को नहीं, अपने भाई को धोखा दिया था।
क्या पल रहा होगा वो आमिर के लिए? सारे रिश्ते, सारे मायने एक झटके में बदल गए।
बिल्कुल। और इसी उथल पुथल के बीच रहीम खान उसे आखिरी गुजारिश करते हैं, काबुल जाओ और हसन के अनाथ बेटे सोहराब को ढूंढो, उसे महफूज जगह पहुंचाओ, यही है वो रास्ता फिर से अच्छा बनने का।
ये आमिर के लिए एक मौका है अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का।
और आमिर निकल पड़ता है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की तरफ। काबुल अब वो शहर नहीं है जिसे वो छोड़ गया था। हर तरफ डर है, वहशत है।
उसे फरीद नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसका गाइड बनता है। उसे पता चलता है कि सोराब अनाथालय में नहीं है, उसे एक तालिबानी अफसर वो अपने साथ ले गया है।
आमिर उस अफसर से मिलने का इंतजाम करता है। मिलने से पहले वो एक फुटबॉल मैच देखता है और वहां तालिबान का खौफनाक चेहरा, बीच मैदान में सरे आम फांसी।
और जब वो उस अफसर के घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अफसर कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दुश्मन आसिफ है।
आसिफ, वही आसिफ जिसने हसन का,
हाँ भाई, अब वो तालिबान का एक बड़ा नेता बन चुका है, जैसे बुराई ने वर्दी पहन लियो।
हे भगवान।
वहां वो सोहराब को देखता है, उसकी हालत बहुत बुरी है। आसिफ उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, और आसिफ सुराब को छोड़ने के लिए एक शर्त रखता है।
क्या शर्त?
कि आमिर को उससे लड़ना होगा, बचपन का हिसाब अब चुकता होगा।
और लड़ाई होती है, आसिफ वो तो वहशी है, बेरहमी से आमिर को पीटता है।
लेकिन पिटते पिटते आमिर अचानक हंसने लगता है।
हाँ, एक अजीब सी शांति महसूस करता है वो। सालों से जो बोझ ढो रहा था वो शायद हल्का हो रहा था। वो उस दर्द को महसूस कर रहा था जो उसने हसन को सहते हुए देखा था। ये पिटाई जैसे जैसे उसका प्रायश्चित थी।
और फिर
ठीक उसी वक्त जब आसिफ उसे जान से मारने वाला होता है, सोहराब उसे गुलेल चलानी आती है अपने पिता हसन की तरह। वो गुलेल से आसिफ की आंख फोड़ देता है
और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। हाँ, आमिर बुरी तरह जख्मी है, उसका होंठ फट गया है, ठीक वैसे ही जैसे हसन का होंठ जन्म से कटा हुआ था। ये निशान जैसे हमेशा के लिए उसे हसन की याद दिलाता रहेगा।
वो सोहराब को लेकर पाकिस्तान भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। सोहराब को गोद लेकर अमेरिका ले जाना ये आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं। और जब आमिर उसे बताता है कि शायद कुछ वक्त के लिए उसे अनाथालय में रहना पड़े, तो सोहराब जो पहले ही इतने सदमे में है, दोबारा अकेले छोड़े जाने के डर से खुदकुशी की कोशिश करता है। वो बच जाता है लेकिन अंदर से टूट जाता है, खामोश हो जाता है। उसकी आंखों की चमक खो जाती है, जैसे जैसे उसकी रूह पर ताला लग गया हो।
कहानी का आखिरी हिस्सा हमें वापस अमेरिका ले आता है, सैन फ्रांसिस्को का एक पार्क। कई महीने बीत चुके हैं। आमिर, सोराया और वो खामोश सोहराब वहां हैं। दूसरे अफगान परिवार पतंग उड़ा रहे हैं।
आमिर एक पतंग खरीदता है, वो सोहराब के लिए पतंग उड़ाता है, एक दूसरी पतंग से पेंच लड़ाकर उसे काट देता है। फिर वो सोहराब की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या वो उसके लिए कटी पतंग दौड़ कर लाएगा।
सोहराब कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से सिर हिलाता है।
और आमिर पतंग के पीछे दौड़ता है और दौड़ते हुए चिल्लाता है वही शब्द जो सालों पहले हसन ने उसके लिए कहे थे,
तुम्हारे लिए हजार बार भी।
और उस लम्हे में सोहराब के होठों पर एक बहुत हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आती है।
अंत कोई कोई परिकथा जैसा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन वो मुस्कान वो उम्मीद की एक बहुत नाजुक सी किरण है।
हाँ, शायद ये दिखाती है कि जख्म भर सकते हैं, रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। प्रायश्चित कोई एक घटना नहीं, एक सफर है।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इसके मुख्य विषयों पर गौर करें, तो सबसे पहले आता है ये विश्वासघात और प्रायश्चित का सवाल। क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और उसकी कीमत क्या होती है? ये किताब दिखाती है कि अपराध बोध कैसे इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है।
बिल्कुल। और रहीम खान की वो बात, फिर से अच्छा बनने का एक रास्ता है, वो उम्मीद जरूर देती है, पर वो रास्ता आसान नहीं होता।
और दूसरा अहम मुद्दा है पिता के पाप, बाबा का राज। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी की गलतियां उनके राज अगली पीढ़ी पर असर डालते हैं। आमिर की यात्रा सिर्फ अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं, बल्कि अपने पिता के कर्मों का बोझ उठाने की भी कहानी बन जाती है।
हाँ, और फिर दोस्ती, वफादारी और समाज का बनाया हुआ भेदभाव, ये भी कहानी के दिल में है। आमिर और हसन का रिश्ता प्यार, जलन, वफादारी, सामाजिक बंधन, सबका एक उलझावा तानाबाना है।
पश्तून और हजारा के बीच का फर्क वो कहानी के दुखद मोड़ का आधार बनता है, और हसन की अटूट वफादारी वो तो जैसे एक नैतिक पैमाना बन जाती है ना?
हाँ, उसकी वफादारी दिल चीर देती है सच में। इसके अलावा यादों और अतीत का बोझ, ये भी एक बड़ा थीम है। कहानी बताती है कि अतीत कभी मरता नहीं, वो लौट लौट कर आता है। उससे भागने के बजाय उसका सामना करने में ही शायद सुकून है।
और आखिर में अपना वतन खोने का दर्द, एक शरणार्थी होने का अनुभव, अपनी पहचान का संकट, ये सब भी बहुत गहराई से दिखाया गया है।
कथा शैली की बात करें तो आमिर का फर्स्ट पर्सन नैरेटिव उसकी स्वीकारोक्ति, वो हमें सीधे उसके अपराध बोध और कश्मकश का हिस्सा बना देती है। वो एक तरह से अविश्वसनीय वाचक दिए है, क्योंकि वो लंबे समय तक खुद से भी सच छुपाता है।
और पतंगे, वो सिर्फ कागज और धागा नहीं है, वो आजादी का प्रतीक है, बचपन की मासूमियत का, संघर्ष का, और अंत में शायद उम्मीद का भी।
सही कहा, ये किताब पाठक को झकझोरती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो आमिर की जगह उस गली में होता तो क्या करता। क्या हम में से किसी में हसन जैसी वफादारी या सोराया जैसी हिम्मत है?
शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अतीत को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हिम्मत से उसका सामना करके, अपनी जिम्मेदारी कबूल करके, शायद जख्मों को भरने का रास्ता खुल सकता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।
और इसकी ताकत शायद इस बात में भी है कि ये हमें दिखाती है कि चुप्पी कितनी विनाशकारी हो सकती है और सबसे मुश्किल वक्त में भी प्यार और वफादारी में कितनी कितनी गहरी ताकत छिपी होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।